नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त, शनिवार को वोट डाले जाएंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 2010 से 77 समुदायों को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। भगवान बुद्ध की जयंती आज देशभर में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव 4 जुलाई को कराने की घोषणा की। एफआईएच प्रो हॉकी लीग में भारतीय पुरुष टीम ने शूटआउट से अर्जेंटीना को हराया और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान बेंगलुरु को हराकर क्वालिफायर के दूसरे चरण में। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 8 राज्यों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार 25 मई को मतदान होना है। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीट, जम्मू की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीट, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीट शामिल हैं। इन 58 लोकसभा सीटों पर कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस प्रतिदिन 12 किलोमीटर ही राजमार्ग बनवा पाती थी, जबकि उनकी सरकार प्रतिदिन करीब 30 किलोमीटर राजमार्ग बना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल हरियाणा के महेंद्रगढ़ भिवानी के चरखी दादरी में अग्निवीर योजना के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक रैली में दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हारने जा रही है और देशभर में भाजपा को 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इधर दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दल जनसभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और उत्तराखंड तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री जनसभाएं और रोड शो करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज मंगोलपुरी और सीमापुरी में रैली कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी रोड शो करेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। भाजपा सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने दिल्ली के सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी पार्टी इस जीत को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली में 25 मई को मतदान के दिन मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवा सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। मेट्रो सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी और उसके बाद सभी लाइनों पर पूरे दिन सामान्य परिचालन रहेगा। दिल्ली परिवहन निगम भी 25 मई को 35 रूटों पर बस सेवा का संचालन सुबह 4 बजे से शुरू कर देगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की। एक रिपोर्ट।
2008 में परिसीमन के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट का गठन हुआ था। पहले यह क्षेत्र पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट का हिस्सा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2009 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की। भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की थी। 2019 में मनोज तिवारी ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लगभग 3.5 लाख वोटों से हराया था। हालांकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की बड़ी आबादी है। इस क्षेत्र में कई प्रमुख मुद्दे हैं, जिनमें जाम की समस्या, जल निकासी, अनधिकृत कॉलोनियां, नागरिक सुविधाओं की कमी और वायु प्रदूषण शामिल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, महागठबंधन और अन्य दलों के नेता छठे चरण के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। राज्य में 7वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रचार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी चंपारण के अरेराज और सुगोली में तथा पश्चिमी चंपारण में जनसभाएं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती आज बिहार में अपनी पहली रैली करेंगी। वे बक्सर में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करेंगी। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव वैशाली, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें पूर्वांचल की आजमगढ़ लोकसभा सीट भी शामिल है। यहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से पार्टी उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। यहां से कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 से पश्चिम बंगाल में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सभी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। ओबीसी प्रमाण पत्र की स्वीकृति देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 2010 के बाद तैयार की गई ओबीसी की सूची को गैरकानूनी बताया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस आदेश से इस वर्ग के नागरिकों की सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। जो लोग पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण के लाभार्थी हैं या राज्य की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, इनमें से किसी की भी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। मुंबई में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान कल इसे मंजूरी दी गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर को 6.50% तक बढ़ाने का फैसला किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने निर्धारित समय से पहले ही आगामी 4 जुलाई को संसद का चुनाव कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटेन में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव का सही समय है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सदस्य हैं। श्री सुनक ने यह घोषणा कल ब्रिटेन में महंगाई में 2.3% की गिरावट दर्ज किए जाने के बाद की, जो पिछले 3 वर्ष में सबसे कम है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भगवान बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, सद्भाव और मानवता तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का संदेश दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और प्रज्ञावान जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भगवान बुद्ध ने मानवता को शांति, अहिंसा, निस्वार्थ सेवा और सदाचारी जीवन के मार्ग पर चलाया। समाचार कक्ष से एक रिपोर्ट।
बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज के साथ बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव कल से ही शुरू हो चुका है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया भर में रह रहे बौद्ध अनुयायी और हिन्दू बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में इसे उत्साह से मनाया जा रहा है। श्रीलंका में कोलंबो और द्वीप के अन्य हिस्सों में 4 दिवसीय जीवंत बुद्ध रश्मि वैशाख उत्सव मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रपति सचिवालय परिसर, शांग्री ला ग्रीन ग्राउंड और प्रसिद्ध गंगा रामया मंदिर में होंगे। 23 से 25 मई तक राष्ट्रपति सचिवालय और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की मंडलियां भक्ति गीत और भक्ति संगीत प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगी। भारतीय उच्चायोग गंगा रामया मंदिर में राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। समाचार कक्ष से जया भारती।
और अब नजर डालते हैं खेल जगत पर।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ यानी FIH के प्रो लीग मुकाबले में अर्जेंटीना को 5-4 से हरा दिया है। मैच का फैसला शूटआउट से हुआ, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने 2-2 गोल किए और 5वां गोल अभिषेक ने किया। कल पुरुष टीम का मुकाबला मेजबान बेल्जियम से होगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम को यूरोपीय दौरे के अपने पहले प्रो लीग मैच में कल अर्जेंटीना से 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। टीम मैच पर अपनी शुरुआती पकड़ को बनाए रखने में नाकाम रही। महिला टीम आज बेल्जियम से खेलेगी। उधर IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में विराट कोहली IPL में 8,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने इस मुकाबले में 33 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स का अगला एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
देश के उत्तरी और मध्यवर्ती राज्यों में अगले कुछ दिन तक भीषण गर्मी जारी रहने की आशंका है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 3-4 दिन के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। उधर तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद चंद्रिका। राजनीतिक दलों के अगले चरण के प्रचार के दौरान वायदे और आरोप तथा पलटवार अखबारों के पहले पन्ने में छाए हुए हैं। जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और हरिभूमि ने निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को इस नसीहत को पहली खबर बनाया है कि धर्म और जाति के आधार पर प्रचार से बचें। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ताना बाना ना बिगाड़े स्टार प्रचारक। देशबंधु की बड़ी सुर्खी है, चुनाव से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश, गुजरात से पकड़े गए ISIS आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। दिल्ली में मतदान के दिन सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा देते हुए नवभारत टाइम्स ने लिखा है, मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में सहूलियत को देखते हुए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा 4 बजे सुबह शुरू कर दी जाएगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, मतदान के दिन बंद रहेंगे दिल्ली के बाजार। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर विश्लेषण शीर्षक से लिखा है, 1996 के बाद लोकसभा चुनाव में इस बार सबसे अधिक 8,360 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वर्ष 1996 में 13,952 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, गर्मी का सितम, राजस्थान समेत 5 राज्यों में रेड अलर्ट। पत्र लिखता है, 9 तपा से पहले तंदूर जैसे तपे कई राज्य, 5 दिन तक राहत नहीं। पत्र ने बीकानेर में गर्म रेत पर पापड़ सेंकने का चित्र दिया है। दैनिक जागरण की खबर है, दक्षिण पूर्व एशिया बना संगठित साइबर ठगी का नया ठिकाना।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त, शनिवार को वोट डाले जाएंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 2010 से 77 समुदायों को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। भगवान बुद्ध की जयंती आज देशभर में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव 4 जुलाई को कराने की घोषणा की। FIH प्रोल हॉकी लीग में भारतीय पुरुष टीम ने शूटआउट से अर्जेंटीना को हराया और IPL क्रिकेट में राजस्थान बेंगलुरु को हराकर क्वालिफायर के दूसरे चरण में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।